अच्छा अब आगे देखते हैं तो आपको पता चलेगा। कौल कौइलुम मिन्हुम, उनमें से एक भाइयों में से एक भाई कहने लगा, एक बोलने वाला, जो बोलने वाले थे सारे बोल रहे थे, उनमें से एक कहने लगा, ला तकतलू यूसुफ, मत कत्ल करो यूसुफ को, व अलकू फी गयाबतिल जुब्बी, तुम ऐसा करो कि तुम इसको एक अंधे कुएं में डाल दो, यल्तकित हु बाद उस सैयारा थी, उठा लेगा इसको कोई काफला, इन कुन तुम फाइलीन, फाइलीन, अगर तुमने कुछ करना ही है तो ये कर लो, फिर तुम ये कर लो, तुम मारना जरूर है, मारो ना, तुमने इसको हाथ रास्ते से ही हटाना है तो वहां पे फेंक दो। तो देखिए अब इसने भी ये तो नहीं कहा कि नहीं तुम ये मत करो, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, मगर उसने एक बुराई में से, दो बुराइयों में से एक छोटी बुराई का कह दिया और उसको समझा कि ये बेहतर है, तो उसको नहीं, प्लान उनका पसंद आ रहा था। तो ये भी एक फिक का एक असूल है, आप फिक कभी अगर पढ़ें तो उसमें एक रूल ये भी है कि जब दो बुराइयां हो ना और आपको एक को चूज करना ही करना है, उसके बगैर चारा नहीं है, तो फिर आप छोटी बुराई को चूज कर लें और बड़ी को छोड़ दें, समझ आई ना बात। आप मिसाल के तौर पे दो कैंडिडेट्स हैं, वोट करना है, अब उनके अंदर से एक जो है वो बहुत ही बुरा है और एक कम बुरा है, अब वोट करना ही करना है आपको, तो फिर आपके पास कोई चारा नहीं, तो फिर कम बुराई वाले को देख लें। अब यहाँ पे कत्ल तो बहुत बड़ी बात थी ना, तो कहा कि फिर तुम ऐसा करो कुएं में ही डाल दो, अगर करना ही है ना तो हम इस तरह से भी हटा सकते हैं इसको रास्ते से। अब देख लें किधर तक, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने भी आपके कत्ल की साजिश की थी, कत्ल की साजिश की थी, और यहां पे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनकी कत्ल की साजिश करी, और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बचाया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी बचाया, और अल्लाह ताला ने उन तीन के अंदर एक बंदा खड़ा कर दिया जिसने ये आइडिया दे दिया। तो अल्लाह ताला ही है जो किसी को हिमायती बना देता है या किसी को आपकी तरफ थोड़ा झुकाव कर देता है। कालू, उन्होंने, अब वो आए, अब देखिए बीच में अननेसेसरी डिटेल्स नहीं है, फिर वो उठे, फिर वो गए, फिर उन्होंने खाना खाया, फिर उन्होंने सोचा हम कल करेंगे, ऐसी कोई चीज नहीं, सीधा बात। कालू, अब वो आए अपने बाप के साथ सारी प्लॉटिंग करके, या अबाना, ए हमारे अब्बा जान, मालका, क्या बात है आपको, लता मन, नहीं आप भरोसा करते हम पर, अला यूसुफ, यूसुफ के मामले में आप हम पे कभी ट्रस्ट नहीं करते, क्या बात है। आप देख लें बात को ऐसे नहीं शुरू किया कि असल में तो ये कहना है कि आप इसको हमारे साथ भेज दें, लेकिन भेजने की बात बाद में, इमोशनल ब्लैकमेलिंग पहले, आके ताना पहले दे दिया, आप तो हम पे ट्रस्ट ही नहीं करते, आपको तो हमारे पर भरोसा ही नहीं। ये बात है जो मैं पहले कहने लगी थी ना कि वो बच्चे कभी कहीं जाने का कहते हैं या कुछ कहते हैं कि हमें वहां जाने दें, अब माँ बाप कह रहे हैं नहीं आपने नहीं जाना, तो बच्चे कहते हैं क्यों, आपको हम पे ट्रस्ट नहीं, और फौरन ट्रस्ट के ऊपर बात आ जाती, ट्रस्ट तो है लेकिन शैतान भी तो है। तो वो कहते हैं और हम तो इसके खैर ख्वाह हैं, हम इसकी सच्ची खैर ख्वाही करने वाले। अब देखें क्या प्लान है और झूठ कितना ज्यादा है, और बाज लोग कहते हैं हमारे बच्चे तो कभी झूठ ही नहीं बोलते हैं, हम तो इतना उन पे ट्रस्ट करते हैं, कभी नहीं हमारे बच्चों ने झूठ बोला, झूठ बोल सकते हैं अगर पैगंबर के औलाद झूठ बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकते हैं बच्चे। और ये देखें वो तो बाद में होना है जो होना है, लेकिन कितने झूठ आए यहाँ पे, तो जब झूठ से बात शुरू हो तो फिर उसका नतीजा भी क्या होगा, झूठ में खैर तो नहीं होती ना, और एक गुना करने के लिए उनको कितने झूठ बोलने पड़े, ये एक झूठ है, फिर आगे भी झूठ है, फिर वापस आके भी झूठ है। मैंने आपको कहा ना एक गुना इंसान करने के लिए जाता है ना तो 10 गुनाहों के दरवाजे खुलते हैं, इसी तरह एक नेकी भी आप करने जाते हैं तो 10 नेकियों के दरवाजे खुल जाते हैं। मैंने कहा हम तो इतने इसके ख्वाहिर ख्वाहें, पता नहीं क्या बात है आपको, आप ट्रस्ट ही नहीं करते हमारे ऊपर। अब दिल की बातें तो नहीं कोई भी जानता, लेकिन माँ बाप को अपनी बच्चों का तो इतना तो पता ही होता है कि कौन क्या है। इसलिए उन्होंने पहले भी अपने बेटे को इनसे वॉर्न किया था। तो आके कहते हैं अरसिल हुमाना गदन, भेजे ना इसको हमारे साथ कल को, यरता खाए पिएगा वो यलाब और खेलेगा, वहां पे एंजॉय करेगा, वो खाए पिएंगे, पिकनिक पे जाना चाह रहे थे कि हम बाहर जाएंगे जरा जा रहे हैं, हम खेलेंगे, आपको तो पता नहीं क्या, आप हमारे साथ भेजते नहीं, आपको हमारे पर भरोसा नहीं है, अब ट्रस्ट करें हम पे, हम इसके इतने खैर ख्वाह हैं, हम वहां पे जाएगा खेलेगा कूदेगा एंजॉय करेगा और इसमें क्या हरज है, तो आपको नहीं पसंद कि वो एंजॉय करे। और इन्ना लहू लहाफिजून, और इसमें भी ताकीदें इतनी है, इन्ना लहू नासिहून में भी और इन्ना लहू लहाफिजून में भी, अल्लाह ताला ने इस कुरान के बारे में फरमाया ना इन्ना लहू लहाफिजून, हम इसके लिए हम हिफाजत करने वाले, तो इसमें इन्ना बेशक भी एक ताकीद है, लह भी एक ताकीद है, इतना एम्फोसिस है इसमें। और इन्ना जो शुरू में आ गया ना, हम उसकी हिफाजत करने वाले, अब शुरू में हाफिजू भी हो सकता था, लेकिन इन्ना लहू ला हाफिजून, इसमें इतनी ताकीदें आ जाती हैं। अब इसको भी ट्रांसलेट करना उर्दू में मुश्किल है क्योंकि फिर समझ नहीं आती कि किस तरह से इसको किया जाए, मगर ये एक असलूब ऐसा है, स्टाइल ऐसा है जिसमें बहुत एम्फोसिस है, ये हम तो हैं ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, हम से ज्यादा बढ़ के इसको कौन ख्याल करने वाला होगा, तो हम तो इसका अच्छा ही चाहते हैं। तो अच्छा यहां से एक पता चला कि अब याकूब अलैहिस्सलाम ये नहीं कहते हराम हराम, पिकनिक हराम, खेलना हराम, क्या तुम हराम काम करने जा रहे हो, नहीं, इसलिए कि देखिए बास दफा ना हमारे लोगों ने शरीयत को या दीन को इतना सख्त कर देते हैं ना कि लोगों के लिए होता है कि हम तो ये कभी कर ही नहीं सकते, इतनी चीजें खुद ही से बना के उसको दीन का हिस्सा बना लेंगे और इतनी उसमें रिजिडिटी होती है कि लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। अब देखें ये आप यहाँ पे देखें, वो खेलने के लिए कह रहे हैं, खाने पीने के लिए कह रहे हैं, और ऐसी एक्टिविटी जो खेल कूद है कभी कभार कर लेना जो जायज हदूद के अंदर है और आपको आपकी तरोताजा भी आपको फ्रेश भी करता है, हेल्दी भी करता है, जैसे रेस लगाना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेस लगाई है, तो अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, ये तो गलत बात है, तो इस्लाम में क्यों ऐसे खेल कूद का, यहाँ पे तो वो कह रहे हैं यलाब, लाभ क्या क्या चीज होती है, खेल यानी कोई सीरियस चीज ना हो जिसमें, तो कभी कभार इसमें कोई हर्ज नहीं है, कभी कभार आप पिकनिक पे जा रहे हैं, आप वहां पे खा रहे हैं पी रहे हैं, अल्लाह की कुदरत के नजारे देख रहे हैं, कोई मसला नहीं है, और बच्चे खेल कूद रहे हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर एक्सट्रीम पे ही चले जाए, हर वक्त ही खेल में ही ध्यान लगा रहे तो वो भी सही नहीं है, हर वक्त ही खाने पीने में लगे रहे वो भी सही नहीं, ठीक है। तो आपको कोई इस्लाम ये नहीं कहता कि आप हर वक्त एक बस गम की तस्वीर बने बैठे रहे हैं और इसको कहें यही नेकी है और यही दीनदारी है और लोग आपको कहें अल्लाह कितना दीनदार इंसान है जो बस ना कोई खाता पीता है तो ना इसने कभी कोई खेल कूद किया। तो अगर ये नाजायज चीज होती तो याकूब अलैहिस्सलाम जरूर कहते वो एक अल्लाह के नबी थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप इसको हमारे साथ बस जाने दें, यानी बड़ी जिद कर रहे हैं। अल्लाह इन्नी ला यहजुनुनी अंतजहबू भी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला भी सुबहान अल्लाह आजमाता उस चीज के साथ है जो इंसान को बड़ी प्यारी लगती है। अब देखिए ना याकूब अलैहिस्सलाम आगे से क्या कहते हैं कि बेशक मुझे गमगीन कर देगा जब तुम इसको ले जाओगे, वो कौन सा हमेशा के लिए ले जाने को कह रहे हैं, लेकिन इतनी देर की भी जुदाई उनको बर्दाश्त नहीं, कहते हैं कि मैं ना पीछे से इसको मिस करूंगा, उदास हो जाऊंगा मैं इसके बगैर, इतना प्यार करते थे, मुझे गमगीन कर देगा इसका जाना, इसका नजरों से ओझल हो जाना। और ये कैसे भाई थे जो उस वक्त भी ना इन्होंने सोचा कि हमारे भाई को अगर इसका थोड़ी देर जाना इतना गमगीन कर देगा, तो अगर हम इसको हमेशा के लिए ले गए उसके आगे से, तो इस बूढ़े की क्या हालत रहेगी, इसकी जान ही ना चली जाए, जब वो देख रहे थे कितना प्यार है इनको, सुभान अल्लाह। तो इसमें एक इंडिकेशन थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कितनी मोहब्बत थी यकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम से, तो तब भी उनके दिल नहीं पसीजे कि वो उनके दिल नरम हो जाए कि अपने बूढ़े बाप की बुढ़ापे के ऊपर ही रहम खा लें, एक दिन की भी जाना उनको नहीं है बर्दाश्त हो रहा, ये हम इनसे इतना जुल्म करें कि इसको छीन ले। ये जिएंगे कैसे फिर? तो उन्होंने कितना बड़ा जुल्म किया अपने बाप के साथ ऐसा काम करके कि बाप को जिंदगी भर के लिए गमगीन कर दिया, कि वो रोए जाए, रोए गए और अंधे हो गए। और कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि कोई बहुत प्यारा होता है और वो बिछड़ जाता है, जिसकी जुदाई का तस्वुर भी इंसान नहीं कर सकता। तो तब ये सोचना चाहिए कि याकूब अलैहिस्सलाम पे क्या गुजरी होगी, क्योंकि कहते हैं, लोग कहते हैं कि ये जो किसी का जो मरना है ना उस पे सबर आ जाता है, लेकिन जो गुम हो जाए ना उसके पर सबर नहीं आता। तो से सोचना चाहिए कि अल्लाह के इतने प्यारे नबी हैं, उनके साथ ये हुआ था, ये उनकी प्यारी चीज ही उससे ही अल्लाह ने उनको आजमा लिया। और देखें ये सारे ही उनके बेटे हैं, कोई ये थोड़ी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ही सिर्फ बेटे, सब बेटे हैं। क्या बाप ने उनकी तरबियत ना की होगी एक जैसी? क्या बाप ने ऐसे थोड़ी क्या एक को इग्नोर किए रखा और सिर्फ एक पे तवज्जो देते रहे? ऐसे थोड़ी ना। लेकिन कभी कभी इंसान की औलाद में ही कोई कैसा निकलता है, कोई कैसा निकलता है। और ये नहीं कह सकते कि अच्छा इसने इसकी नहीं सही तरबियत की। कभी ऐसा होता है कि इंसान अपनी औलाद में कोई ऐसे काम देखता है जो उसको पसंद नहीं होते कि ये काम ये करें, लेकिन फिर देखते हैं आगे कि क्या होता है। फिर कहते हैं वह अखाफू, और मैं डरता हूं अय्या कुलहु ज़िब्बु, कि इसको कहीं भेड़िया ना खा जाए। वह अंतुम अन हो गाफिलून, और तुम उसे गाफिल हो, तुम कहीं और अपने खेलकूद में लग जाओ इसको भेड़िया कर। लेकिन जब आपको कोई चीज बहुत प्यारी होती है तो आपको उसके जाने का, उसके जुदाई का खौफ होता है। और ये तो जानते भी थे कि बेटों का क्या क्या इनके सेंटिमेंट्स हैं, क्या इनके जज्बात हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए। तो ये ना हो इसको इग्नोर कर दें और ये इसको कोई भेड़िया ना खा दे। अब उलमा कहते हैं कि क्या वाकई उनको भेड़िए का डर था, या वो सिर्फ इन लड़कों से जान छुड़ाने के लिए कह रहे थे? दोनों बातें हो सकती, क्योंकि उस इलाके में वाकई बहुत भेड़िए होते थे और जंगलों में ऐसी जगहों पे इस तरह के खतरे रहते थे। और ये भी सही है कि इसको, ये झूठ तो नहीं है, तौरिया इसको कहते हैं कि वो अपनी जान भी छुड़ाना चाहते थे कि अच्छा बस अब किस तरह से अब इंसान ऑफ गार्ड पकड़ा जाए। कभी कभी बच्चे कितना जिच कर देते, नहीं ऐसे नहीं, नहीं नहीं अब जाने दें, हमें जाने दें, जाने दें। अब इनके बच्चे वो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि किस तरह बच्चे माँ बाप को मजबूर कर देते, कॉर्नर कर देते हैं कि माँ बाप की बस इधर इधर कोई ना कोई बात कहते हैं, कोई बहाना करते हैं, कुछ करते हैं, बच्चे जान नहीं छोड़ते। तो उन्होंने कहा कि ये ना हो कि भेड़िया ही खा जाए मेरे बेटे को। अच्छा अब कालू, उन्होंने कहा, अब हर चीज का जवाब तो उनके पास तैयार था। लइन अकलहु ज़िब्बु, अगर भेड़िए ने इसको खा लिया, व नहनु उसबतुन, और हम एक गरों हैं, तो फिर तो हम कैसे भाई हैं? फिर तो फिर हम बड़े खसारे में हैं, फिर तो हम बहुत ही लूजर्स हैं कि अगर हमारे होते हुए भेड़िया इसको खा जाए। तो वो पीछे नहीं हट रहे थे ना, उनको था कि यार इससे यहां पता चलता है कि इसका मतलब याकूब अलैहिस्सलाम पहले भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके साथ कभी नहीं भेजा करते थे, कभी इनके साथ अकेले नहीं उन्होंने किया था। इसीलिए तो कह रहे हैं आप हम पे ट्रस्ट नहीं करते, आप तो इसको हमारे साथ भेजते नहीं है, हम तो इसके खैर ख्वाह हैं। उनको इतनी बात करनी पड़ रही है, वरना वो ये कहते कि हम पिकनिक पे जा रहे हैं तो इसको भी ले जाए साथ। या आजकल तो बच्चे बाज दफा पूछते भी नहीं, वो कहते हैं बस हम जा रहे हैं, हम सब मिलके जा रहे हैं। लेकिन उनको पता था कि बाप नहीं जाने देगा और बाप ने पहले भी कभी नहीं जाने दिया था, तो इसलिए वो ये सारी बातें कर रहे हैं। और जाहिर है अपने मन में ही खोट था ना, तो इतना इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं आप जाने दे जाने दे, वरना वो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अच्छा समझते ही नहीं थे, तो फिर उनको इतना ले जाने की क्या जरूरत है। और यहां पे आप देखें, उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम की पहली बात का कोई जवाब नहीं दिया कि आप वो कह रहे हैं कि मैं तो इसको इसके पीछे गमजदा हो जाऊंगा। अल्लाह हू अकबर, इतना खूबसूरत बच्चा और इतना प्यार लेने वाला बच्चा और इतना अखलाक वाला और मैनर्स वाला बच्चा और बाप के साथ इतना शफीक बच्चा और इतना अदब एहतराम करने वाला बच्चा, कि फिर कितना नहीं प्यारा होगा बाप। तो उन्होंने उनकी पहली बात का तो कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए कि यही बात तो उनको सबसे ज्यादा चुभती थी। उन्होंने दूसरी बात का जवाब दिया कि भेड़िया कैसे खा लेगा जब हम ही वहां पे मौजूद होंगे। और वाकई वो इतना स्ट्रॉन्ग आदमी थे, लड़के थे, नौजवान थे, वाकई उनके होते हुए इट मेक सेंस, इसमें कोई गलत बात नहीं थी, इट मेक सेंस कि इतने जवानों के होते हुए भेड़िया के बच्चे को ले जाइए, कैसे हो सकता है? अगर लेकिन सीरियस हो तो फिर है ना, इसका मतलब है कि अगर हिफाजत करना चाहते तो थी, लेकिन उन्होंने जब खुद ही शर का इरादा कर लिया था तो फिर क्या हो सकता था? अब बाप क्या करते, जाने दिया। कहानी को अब आगे, इस किस्से को ये नहीं कहा गया यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम ने फिर ये कहा जो उनके पास थी, यानी यहां पे हमें इन डायलॉग से पता चला रिलक्टेंस जो याकूब अलैहिस्सलाम को थी, और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा जाए, मगर इन्होंने इतना मजबूर कर दिया कि वो आमादा हो गए, राजी हो गए, और उन्होंने कहा अच्छा चला जाए। फलम्मा ज़हबू बिही, तो जब वो ले गए उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम को, वह अजमाऊ और उन्होंने इत्तेफाक कर लिया, अन यजअलूहू फी गयाबतिल जुब, के डालें इसको हम कुएं में, अंधे कुएं में, यानी ऐसा दूर दराज कुआं था जो कि जहां पे रोज रोज लोग नहीं जाते थे, क्योंकि जहां पे लोग रोज जाते हैं ना वहां पे उन्होंने उसको पक्का किया होता है, उसका एक सिस्टम होता है। एक होता है कि जिसमें कोई कोई गुजरता आता जाता, भूला भटका कोई काफला कोई आ गया तो उसमें से कर लेगा, वरना ऐसे ही पड़ा हुआ है वो कुआं। उस यानी इसके ऊपर जमा कर लिया उन्होंने, वो इत्तेफाक कर लिया। अब वो इस पे सारे राजी हो गए। तो कहते हैं कि जब लेकर भाई इनको रवाना हुए तो घर से निकल गए ना जब, तो उन्होंने रास्ते में इनके साथ वो शदीद अदावत का इजहार किया। एक भाई मारता था तो दूसरे से फरियाद करते थे कि मुझे मार रहा है, वो भी एक उन लगाता था, फिर उसके पास जाके रहम मांगते थे, फिर वो भी एक लगाता था। और इतना उन्होंने इस तरह से इनको जदोकोब किया कि कत्ल ही कर दे इनको। तो तब इनके कहा जाता है कि इनके एक भाई ने जो पहले जिसने कहा था कि कत्ल ना करो, उसने कहा कि तुमने वादा किया इसको कत्ल नहीं करोगे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर कुएं पे ले चलते हैं इसको। तो जब कुएं पे लेकर गए तो मुंडेर पे खड़ा करके उनकी कमीज उतारी, उनका मकसद ये था ना कमीज ले जाके बाप को खून लगा के दिखा देंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरी कमीज वापस कर दो, मेरा जिस्म नंगा हो रहा है, मेरी कमीज वापस करो। तो उन्होंने कहा कि वो तो नहीं हमने वापस करनी है। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया। यानी उनकी इतनी फरियाद, इतनी उनका रोना, इनका पुकारना, एक बच्चा रो रहा हो दिल पसीज जाता है। और ये डिटेल्स आई नहीं है, कई तफसीरों में लिखी नहीं, अल्लाह ताला ने नहीं यहाँ पे बयान की, क्योंकि ये उनके ईवल एक्ट्स थे ना, अल्लाह ताला ने नहीं बयान की इस तरह डिटेल में। क्यों? इसलिए कि इन द एंड हमें पता चलता है कि इन्होंने माफी मांग ली थी और अल्लाह ताला ने इनको माफ कर दिया था। अल्लाह ताला ने इनके ये, यानी इवन मैं जब पढ़ रही थी ना, क्योंकि मेरा बच्चा भी इसी एज का है, तो इंसान के सामने ना अपने बच्चे भी आने लगते हैं, और इंसान को फील कर सकता है कि वो बच्चा उस वक्त कैसा, एक बच्चे को उस वक्त कैसा लग रहा होगा कि भाइयों से वो रो रहा है, उनको फरियाद कर रहा है, उनको मना रहा है, उनको पुकार रहा है, और वो कुछ सुनने को तैयार नहीं, इतने उन्होंने अपने दिल सख्त कर लिए। और उसको बच्चे को मासूम को ये भी नहीं पता है मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं, मेरा क्या कसूर है। अल्लाह हू अकबर। तो जब उन्होंने कुएं में फेंक दिया तो अल्लाह ताला ने फरमाया वा औहैना इलैह, हमने वही की उसकी तरफ। अब इन्होंने तो रस्सी से बांध के, कमीज उतार के रस्सी से बांध के उनको धक्का दे दिया उस कुएं के अंदर, और कहा जाता है कि कुएं के अंदर एक पत्थर था, उसके ऊपर ये बैठ गए थे। जब आधे रास्ते पे पहुंचे थे ना, तो उन्होंने रस्सी काट दी थी, तब वो नीचे गिर गए और एक कुएं में इस जगह पे बैठ गए। अब आप इमेजिन करें, ये एक ऐसी जगह है, और वो बच्चा जो इतना लाडो में, पुप्पी ने भी इतना प्यार, बाप ने भी इतना प्यार किया, किस जगह पहुंच गया। ये तो मैं आपको बता रही हूं कि इस सूरह के अंदर यानी फ्लक्चुएशन जो है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, बिल्कुल फिर ऊपर फिर नीचे, बहुत ज्यादा है। और ऐसा इंसान ना सबसे ज्यादा खतरा होता है डिप्रेशन में जाने का, जिसने अच्छे दिन देखे हो। जो बेचारा एक बिल हालात का सताया हुआ जिंदगी भर से, अब कई लोग हैं बेचारे ऐसे ही हालात में उन्होंने जिंदगी गुजारी होती है, बचपन से ही वो किसी कच्चे मकान में रहते हैं, बस रोटी सूखी मिलती है, वो इसी के अंदर खाते हैं, वो इसी के अंदर चल रहे हैं, बस इसी तरह जमाने के थपेड़े उन्होंने खाए, वो इसी में पले बड़े और जवान हो गए, वो एक अलग बात होती। लेकिन एक इंसान लग्जरीज में रहने वाला, एक इंसान ने बहुत कुछ देखा हो, जब वो डाउनफॉल का शिकार होता है, आपने देखा होगा कई लोगों को हार्ट अटैक हो जाते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। आज कारोबार इतना ऊपर है, कल को डाउन हो गया एकदम, इतना बड़ा नुकसान हो गया, उनसे वो उसको सहना भी मुश्किल है। तो ये एक बच्चा है जो कुएं के अंदर बैठा हुआ है, और वो आप अपने आपको या अपने बच्चे को ऐसी जगह पे सोच के देखें। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमाया हमने वही की उसकी तरफ, वही किस लिए की? उनको तसल्ली देने के लिए। और ये कैसी वही थी? ये वो वही नहीं है जो नबियों को होती है, ये वो वही है जिसको हम इल्हाम कहते हैं, अंदर से आवाज आती है। और ये और लोगों को भी हुई है, आम लोगों को, जैसे उम्मे मूसा को सूरह कसस में अल्लाह ताला ने फरमाया वह ओहैना इला उम्मे मूसा, मूसा अलैहि सलाम की माँ की तरफ वही की। वो वही लफ्ज है, लेकिन वो वही, वो वाली वही नहीं है जो नबियों के ऊपर अल्लाह ताला का पैगाम आता है। या सूरह नहल में अल्लाह ताला ने वह ओहा रब्बू का इला नहल, अल्लाह ताला ने तेरे रब ने शहद की मक्खी की तरफ वही की। तो ये अल्लाह ताला जिसको कहते हैं ना इल्का, दिल में डाल देना बात, इल्हाम या इस तरह की चीज, ये लफ्ज कहते हैं, वो है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह ताला ने डाल दिया। आप फिक्र ना करें, ला तू नबी अन्ना हूं, अलबत्ता आप उनको बताएंगे, एक दिन इनको आप बताएंगे इनके इस काम के बारे में, जो इन्होंने ये किया है ना, आप इनको ये काम याद दिलाएंगे, इनको नहीं पता होगा, हम लाए शुरू, उनको नहीं शऊर होगा, उनको याद भी नहीं होगा, आप इनको ये दिन, ये जो वाकया हुआ है, ये जो इन्होंने काम किया है, ये आप इनको याद दिलाएंगे। अल्लाह हु अकबर, वजह। अब आप इसको इमेजिन करके ना, और फिर आप सोचें कि ये क्या हो रहा है, वो बच्चा वहां पे छोड़ आए हैं। अब वो बच्चा 3 दिन, कहा जाता है यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में पड़े रहते, आसान है ये कोई बात? वह जाऊ अबा हूं, और वो आ गए अपने बाप के पास, ईशान, ईशा के वक्त, यानी वैसे तो देखिए ईशा तो सूरज ढलने के बाद है, जब शफक की सुर्खी खत्म हो जाए, अंधेरा छा जाए, तब ईशा होती है। ये कौन सा टाइम था पिकनिक से आने का? जानबूझ के लेट करके आए ना, ताकि बाप को ये पता चले कि हम तो कितना ढूंढते रहे, या हमने कितनी कोशिशें की, या हमने क्या क्या किया, और इस तरह टाइम लग गया इसमें। यबकूना, रोते धोते आ रहे हैं, रोते पीटते आ रहे हैं, और रोना धोना और एंटर हो रहे हैं। कालू, कहने लगे, या अबाना, ए हमारे अब्बा जान, इन्ना जहबना। अब देखें वो कैसे यूसुफ अलैहि सलाम कहते हैं या अबती, और ये कह रहे हैं या अबाना, ना सिंपल का वो जिस तरह से कह रहे हैं ना, उसमें भी तस्गीर है। इन्ना जहबना, बेशक हम चले गए, नस्ता बेखो, हम दौड़ लगाने के लिए चले गए थे, रेस लगा रहे थे। वह तरक ना यूसुफ आइंदा मताईना, और हमने छोड़ दिया यूसुफ को अपने सामान के पास, कि छोटा बच्चा चलो ये सामान की हिफाजत करेगा, हम रेस लगाते लगाते दूर निकल गए, तो पीछे से क्या हुआ? फअकल हो जेबू, उसको तो भेड़िया ने खा लिया। वह मानता भी मोमिन लाना, और आपने कौन सा हमारी बात का यकीन करना, वाला कुन्ना स्वादिकीन, चाहे हम सच ही बोलते रहे, आप कौन सा हमारा यकीन करेंगे? अब ये जो इंसान जब गिल्टी कॉन्शियस होता है ना, तो फिर ये इसी तरह की बातें करता है। आपने कौन सा यकीन करना है, रो धो रहे हैं, आपने कौन सा हमारी बात माननी है, हम चाहे सच भी बोल रहे हो। अब देखें वो ही चीज जो यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम ने कही थी, इनको पहले से आइडिया नहीं था कि हमने क्या बहाना करना है। वो ही चीज जो याकूब अलैहिस्सलाम ने कही थी, वो ही इन्होंने लाके बहाना करके रख दी। वरना देखें उन्होंने तो बस ये प्लानिंग की थी ना, हम ऐसा करेंगे फिर इसको वहां पे कुएं में डाल देते हैं, कत्ल कर दो या कहीं फेंक आओ इसको, बाद में आके क्या कहना है ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। लेकिन जब याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, तो उन्होंने कहा लो ये तो हमें बना बनाया बहाना मिल गया, तो अच्छा बहाना है वाकई, यहाँ पे तो भेड़िए होते हैं तो हम यही कह देते हैं। वही हुआ जिसने जो आपने कहा था वैसा ही हो गया। वजा वो अला कमीज ही विदमिन, और ले आए उसकी कमीज पर खून लगा के, कह दे बिन झूठा खून। ये खून की सिफत बताई जा रही है, खून खुद बोल रहा है झूठा है। उन्होंने एक जानवर मारा, उसका खून लगा के ले आए। अब इमेजिन करें एक बाप की कैफियत, एक बच्चे के ऊपर जो गुजर रही है वो तो है ही है, और एक बाप की कैफियत। और उस वक्त तो आप सोचते होंगे कि वो तो बाप का क्या हाल होगा, वो तो धाड़े मार रहा होगा, वो तो चीख रहा होगा, वो तो चिल्ला रहा होगा, वो तो इनको पीट रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा। काला बल सव्वत लत लकुम अनफुसुकुम अमरा, बल्कि आसान कर दिया तुम्हारे नफ्सों ने काम को। ये काम है जो, ये जो बुराई का काम है, ये तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए आसान कर दिया इसको करना। इंसान का नफ्स उसको इस तरफ ले जाता है ना, और उससे वो ही गुनाह के काम करा लेता है, उसके लिए आसान कर देता है। देख लें इसीलिए इंसान गुनाह करता है ना, तो नफ्स कितनी तरह की उसको जस्टिफिकेशन सुझा देता है, किस तरह बहला देता है। इंसान शायद अभी इरादा भी ना किया हो, लेकिन नफ्स किस किस तरह उसको ठुसलाता है कि वो कि इस काम को करने पे राजी हो जाए। नहीं ऐसे है, नहीं देखो लोग भी तो करते हैं, नहीं तो क्या हो गया एक दफा ही करना है, नहीं तो ये बाहर शैतान और अंदर इंसान का नफ्स उसका दुश्मन है। उनको ये तो पता था, ये तो यकीन था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये मार के नहीं आ सकते, क्योंकि वो जो कमीज थी वो भी बिल्कुल सही सालिम थी। अच्छा भी है, वो कहते ना हर मुजरिम अपने पीछे कुछ ना कुछ निशान छोड़ जाता है। इन्होंने भी क्या किया, वो जल्दी के अंदर कमीज को फाड़ना भी भूल गए, तो उन्होंने कहा ये अच्छा भेड़िया था जिसने कमीज उतार के फिर यूसुफ को खाया, तो इसका मतलब ये झूठ बोल रहे। और दूसरी बात ये, उनको ये पता था यूसुफ अलैहिस्सलाम ये जो ख्वाब देखा था ना वो सच्चा है, और एक दिन ऐसा कुछ होगा। लेकिन अब ये जो बड़े वाकया हो गया, तो ये उनको पता है कि वो उनकी वफात नहीं हुई, वो उनको भेड़िए ने नहीं खाया, एक दिन जरूर आएगा कि वो मिलेंगे। अच्छा ये भी नहीं है कि उनको लान तान कर रहे हो, गालम गलोच कर रहे हो, जो उनको बुरा भला कह रहे हो, जो आम लोग करें इस वक्त उनका रिएक्शन हो, या टकरे मारना शुरू हो जाए दीवारों से, या गिरेबान फाड़ने शुरू कर दें, या नोहा करना शुरू कर दें। नहीं, तो बस इतनी बात कही, और फसबर उन जमील, तो सबरे जमील यानी मैं सबर करूंगा अच्छा सबर। सबरे जमील कौन सा सबर होता है? सबरे जमील वो सबर होता है, सबर के भी देखें कई लेवल्स हैं, और जमील सबर, खूबसूरत सबर। खूबसूरत सबर कौन सा? यानी इंसान ऐसा सबर करे कि जिसके अंदर वो किसी के ऊपर को भी शिकायत ना करे, शिकवा ना करे मखलूक के साथ। अल्लाह ताला कोई अपनी बात सुनाए, मखलूक के पास ना जाए कि मखलूक उसको कोई तसल्ली दे, कोई उसको समझाए, कोई उसको दिलासे दे। वो भी एक सबर आ जाता है फिर इंसान को, जब लोग यानी दिलासा देते हैं तो फिर भी सबर आ ही जाता है। लेकिन वो किसी के सामने अपना अपना दुखड़ा रखे ही नहीं, किसी के सामने कोई बात करे ही नहीं, वो सबर सबरे जमील है। सुभान अल्लाह, वो क्या कह रहे हैं कि मैं सबर करूंगा, सब्रे जमील करूंगा, आम सबर नहीं, इतनी बड़ी आजमाइश। और वाकई अब इनकी आगे दुआ भी देखें, नमा अश्कु बसी व हुज़्नी इलल्लाह, तो वाकई अल्लाह से ही उन्होंने अपना सारा जो भी बात थी ना वो अल्लाह ताला के आगे ही रखी है, किसी और के आगे नहीं रखी। वल्लाहुल मुस्तान, अल्लाह ताला ही है जिससे मदद चाही जा सकती है, अल्लाह ही मदद करने वाला है, अल्लाह ताला ही की तरफ मैं रुजू करता हूं, यानी जो कुछ तुम कहते हो ना इस पर मैं अल्लाह से मदद मांगूंगा, इस पर मैं अल्लाह से ही अपना दुखड़ा रोऊंगा और उसी से मदद की दरख्वास्त करूंगा। तो एक सबर और एक अल्लाह से मदद, मुस्तान जैसे हम कहते हैं ना, या का नस्ताइन, अल्लाह हम तो जी से मदद मांगते हैं, और वो कह रहे हैं वल्लाहुल मुस्तान। यही बात किसने और कही थी, किसने और कही थी जब वो मुश्किल में पड़ी थी, आयशा रजील तलाना, कि जब उन पे तोहमत लग गई थी तो तोहमत का दाग मिटाना इतना मुश्किल काम है, इसलिए कि आपके पास कोई गवाह नहीं होते, इसीलिए इसको बहुत कबायर गुनाहों में से कबीरा गुनाह कहा गया, किसी भोली भाली औरत के ऊपर तोहमत लगा देना, क्योंकि उसके पास फिर अपनी सफाई पेश करने के लिए क्या है, कोई गवाह लाएगी कि ऐसा नहीं हुआ, कैसे इस इल्जाम को मिटाएगी। तो जब उनको कुछ और नहीं मिला ना, तो फरमाते हैं कि मैं भी यूसुफ के बाप की तरह ही कहूंगी वल्लाहुल मुस्तान। और ये बड़ा प्यारा कलमा है, यही कहना चाहिए वल्लाहुल मुस्तान। किसी के भी आगे इंसान अब कुछ उसके हाथ में नहीं रहेगा ना, देखें अब बेटे क्या कारनामा करके आ गए हैं, बाप क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, या तो ये से कह सकता है मेरी तरबियत ऐसी निकली, मेरे बेटों ने ये कर दिया, मेरी तरबियत का कसूर, और डिप्रेशन में चले जाते। बाज दफा ना वालदेन कितनी भी कोशिश कर ले, औलाद की तरफ से आजमाइशें आती हैं, और आजमाइश बाज दफा ये होती है कि वो चीज जो आप अपनी औलाद को नहीं चाहते कि वो ये काम करें, वो करते हैं जाके, जैसे यहां पे हुआ। तो ना उन्होंने, देखें एक बात नोट करें, उन्होंने ये कहीं नहीं कहा मैं तो पहले ही कह रहा था ना जाए, मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये नहीं होना चाहिए, मैं तो भेज ही नहीं रहा, हाय मैंने क्यों भेज दिया, अगर मैं ना भेजता तो ये ना होता, अगर मैं ना ये करता तो ऐसे होता, हाय काश अगर ऐसे, ना अगर कहा ना काश कहा, दोनों चीजें नहीं कही। वल्लाहुल मुस्तान अला मा तसिफून, और अल्लाह ही है जिससे मदद चाही जा सकती है इसके खिलाफ जो तुम बयान कर रहे हो, जो बात तुम कर रहे हो ना उसके, उस बात के आगे मैं अल्लाह से ही मदद मांगता हूं। कितने लोग हैं कि इतनी मुसीबत के वक्त अल्लाह को ऐसे पुकारे या उनको याद भी रहे, और जिसने बुरा किया हो, इंसान तो कहता है इस वक्त इससे इंतकाम लूं, और कुछ नहीं इंतकाम ले सकते तो इसको मारूं पीटूं, लेकिन कैसा वाकई अल्लाह ताला ने इनको सबर दिया था, और ना ही ये कहा कि अल्लाह तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कोई गिला नहीं। इंसान के ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है ना, तो सबसे पहले उसको ये ख्याल आता है मैं ही क्यों, मेरे ऊपर ही क्यों, अल्लाह मैं ही रह गई थी। अच्छा चाहे मुंह से ना भी बोले ना, दिल में ऐसे सोच रहे होते हैं, दिल में ये बातें चल रही थी, अपनी जुबानी हाल से कह रहे होते हैं, क्यों ऐसे क्यों किया अल्लाह ने मेरे साथ ही ये होना था, और मेरे ही बेटे के साथ होना था, और मेरे सबसे प्यारी चीज के साथ ही होना था। तो जिस चीज से जितना लगाव ज्यादा होता है ना, जितनी मोहब्बत ज्यादा होती है, उतना ही उसके खोने का दुख भी होता, तकलीफ भी होती, और उतना ही उस चीज से आजमाइश भी हो जाती। किसी के लिए औलाद होती है, किसी के लिए माल हो सकता है, किसी के लिए और कोई उसकी चीज हो सकती है, अल्लाह हू अकबर। तो अल्लाह ताला ने उनको महबूब तरीन बेटे, हालांकि इनमें से भी कोई बेटा, 12 बेटे इनमें से किसी और बेटे के साथ कुछ हो सकता था, लेकिन उसी के साथ हुआ। तो अब ले लें ये मोहब्बत बाप की, वो तो बाप जो है हमें आगे पता चलेगा, वो बाप तो इस कदर गम के अंदर थे, वो तो हर वक्त रोते रहते थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करते रहते थे, और इनसे मुंह मोड़ लिया था उन्होंने। यानी वो चाह रहे थे ना कि हमें वो बाप का चेहरा खाली हो जाए हमारे लिए, वो उलट हो गया। अब तो वो जिस बच्चे को ये बर्दाश्त नहीं वो करते थे कि इससे मोहब्बत करें, अब ये हाल हो गया कि वो हर टाइम उसी का जिक्र कर रहे हैं, हर टाइम। वो कहते हैं ना, आगे आप देखेंगे इसी सूरत में, वो कहते हैं आप तो हर वक्त यूसुफ का ही जिक्र लिए बैठे रहते, हर वक्त उसी को याद करते रहते। इसका मतलब उनकी याद उनके दिल से गई नहीं। हर नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आता है, शर के बाद भी खैर आती है, मगर बहुत सारे लोग इसके लिए सब्र नहीं कर पाते। हम चाहते हैं अगले दिन ही सब चीज ठीक हो जाए, सब ऐसा हो जाए कि जैसे कभी कुछ गलत हुआ ही नहीं था, कोई मसला हुआ ही नहीं था। नहीं, टाइम लगता है। इनको भी यूसुफ अलैहिस्सलाम, इतने सब्रे जमील के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो गए, बादशाह बन गए, कहां इतनी बड़ी पोस्ट पे जाके तब जाके मिले, तो ऐसा नहीं कि अगले दिन ही मिल गए थे। तो फसब्र उन जमील, उन्होंने सब्र किया, और अच्छा सब्र किया। बाकी 2 दिन सब्र करके नहीं कहा कि अब क्या, अब तो कुछ खैर आई ही नहीं, अब तो कुछ कोई दिन बदले ही नहीं, मैंने तो सब्र किया था। अल्लाह ताला तो सबर करने वालों के साथ, अल्लाह सबिरीन, अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह सबर करने वालों के साथ। सबर क्या चीज होती है, मैंने आपको पिछली दफा भी बताया था, रोक लेना खुद को। हर जो एक नेचुरल रिएक्शन होता है ना इंसान का किसी चीज के बारे में, वो अगर अल्लाह रसूल की हुक्म के खिलाफ है तो उससे अपने आप को रोक लेना। जैसे कि दिल चाह रहा हो उस वक्त की चीखें और नोहा करें और सर पटकें अपना और कपड़े फाड़ दें अपने, लेकिन उस वक्त इंसान अपने आप को रोक ले, रोक ले, और अपने आप को कोई नेगेटिव रिएक्शन से ना बचा के रखे, और जुबान को नेगेटिव बातों से बचा के रखे। ये है सबर, इसको सबर कहते हैं। और ये तो सबर और भी बड़े पाए का, कि सबर उन जमील के, जो ऐसा सबर जो बहुत अच्छा है, ऐसा सबर जिसका ताल्लुक में सिर्फ इंसान अल्लाह ताला के आगे रखे, किसी के आगे कोई बात है ही नहीं, कोई किसी से ना बयान करना, ना शिकवा करना, ना कुछ करना। अब ये वो मौका था कि यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम इंतहाई डिप्रेशन में चले जाते, लेकिन डिप्रेशन में नहीं गए इसी सब्र की वजह से, और इसी वजह से कि वल्लाहुल मुस्तआन, अल्लाह है ना, अल्लाह तो है जिससे मैंने मदद चाही। तो जो अल्लाह ताला का सहारा है ना, ये इंसान को मजबूत करता है कि वो दिन बदलता है, और आप इसे देखेंगे दिन बदलते हैं, दिन बदलते हैं। तो हम वालदेन के लिए भी सबक है, औलादों के लिए भी इस सूरत में सबक है। वजाअत सय्यारतुन, और आ गया एक काफला उस जगह। अब वो सीन है, वहां पे एक काफला आया, उसने पड़ाव डाला। कहा जाता है कि कोई काफला शाम से मिस्र की तरफ जा रहा था। फअरसलू वारिदहुम, तो उन्होंने भेजा अपना पानी पिलाने वाला। वो एक बंदा रखा होता था जो जाके पानी वगैरह लेकर आता था काफले वालों के लिए। फअदला दलवहु, तो उसने अपना डोल डाला कुएं में। काला या बुशरा, उसने कहा, उसने अंदर नारा लगाया, ओ खुशखबरी, ओ हादा गुलाम, ये तो एक लड़का है। क्यों इतना खुश हो गया वो? इसलिए कि उस जमाने के अंदर इंसान भी बिकते थे, तो इंसान का मिल जाना एक मतलब बेसहारा सा इंसान, एक अकेला ऐसे ही पड़ा हुआ इंसान मिल गया है, कल को बेचेंगे, ये तो एक खजाना है, ये तो कितने का बिक जाएगा। वह असरूह भी दातन, तो उन्होंने छुपा लिया उसको सामान तिजारत में। क्यों छुपा लिया? कोई देख ना ले, किसी का होगा तो कोई कहेगा अच्छा ये तो हमारा है बच्चा, तुम किधर लेकर जा रहे हो, जैसे बच्चों को किडनैप करते हैं कोई लोग। तो अब वहां से लड़का तो मिल गया। अब एक सवाल जहन में आता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम क्यों नहीं बोले कि नहीं 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 मुझे नहीं, चीखे मारते या भागते या कुछ करते? असल में एक बात उलमा ये लिखते हैं कि वो जानते थे कि मैं अगर घर चला गया मेरा भाई मुझे जान से मार देंगे। ये तो अभी उन्होंने यहां तक मुझे फेंक दिए तो मुझे जान से मार देंगे। तो एक खौफ, एक बच्चा है ना, एक खौफ दिल में था। और फिर ये भी हो सकता है कि उस वक्त उनको ये इतना बस ही ना हो कि वो कुछ कह सके। वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून, और अल्लाह ताला इल्म वाला साथ उसके जो वो कर रहे थे, जो वो कर रहे थे अल्लाह ताला तो देखने वाला ना, किसी और को नहीं पता, लेकिन अल्लाह ताला जानता है कि क्या ये कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। व शराउहू बिथमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा। अब वो ले आए बच्चे को पकड़ के। अब वो ऐसे जमाने थे, कनान की फलस्तीन की सरजमीन से चल पड़े मिस्र आए, इतनी दूर मिस्र है। तो चलते चलते वो वहां पहुंचे और सामान में छुपाया गया इनको। और देखें कोई, वो उन टाइम्स में ना कोई पुलिस होती थी, ना कोई बॉर्डर सिक्योरिटी थी, ना कोई कुछ था, कहीं कोई चेकिंग करने वाला नहीं, कोई नहीं। इसीलिए तो लोगों को लूट लेते थे, सामान लूट लेते थे, और औरतों को बच्चों को इस तरह लौंडियां गुलाम बना के ले जाके बेच देते थे। कोई लोग सफर कर रहे थे तो आपको पता है हजरत जैद को भी इसी तरह जो लोगों ने उनको पकड़ लिया था और ले जाके बेच दिया था। इस तरह इंसान भी बिकते थे उस वक्त। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें उस दौर को नहीं दिखाया जो गुलामी का दौर था, मगर गुलामी का दौर भी बहुत ही एक मुश्किल दौर था। इंसान अगर किसी तो जगह भी सिक्योर नहीं है, इंसान जो गुलाम बन जाता था तो उसकी अपनी थोड़ी कोई आजादी रहती थी। तो वो लेकर आए और मंडी के अंदर बेचा। इंसान इंसान जहां पे बिक रहे हैं वहां कौन बिक रहा है, इमेजिन कर सकते हैं आप, कौन बिक रहा है? करीम इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने करीम, अल्लाह अकबर, खुद भी करीम और बाप दादा क्या चीज थे। एक दफा एक खातून ने कहा कि मैं इसलिए इतनी डिप्रेशन में हूं कि आपको पता नहीं है कि मैं किस खानदान से थी और हम कितने दौलत में थे और आज मैं किस जगह पे आ गई और किन हालात में फंस गई, और आज एक रोटी खाना भी हमारे लिए मुश्किल है। तो वो कहती मैं डिप्रेशन में इस वजह से हूं, क्योंकि देखिए मैंने जैसे आपको बताया ना कि जो जितनी बड़ी पोजिशन या जितनी बड़ी जगह या जितने बड़े अच्छे हालात में रहा हो उसके लिए तो 4 दिन की भी थोड़ी कमी नीचे होना वो कबूल नहीं होती। किसी लोगों को, कोई लोग बेचारे रोज ही सूखी रोटी खाते हैं, कई लोगों को पराठा ना मिले तो वो रोने शुरू जाते हैं, नहीं आज पराठा क्यों नहीं पका जी। कई पानी के अंदर नमक मिर्च डाल के खा रहे होते हैं, और कईयों के घर में गोश्त ना पके तो उनको होता है कि आज तो हम खाना ही नहीं खा सकते, आज कुछ पका ही नहीं है क्योंकि आज दाल पकी थी। वो यूसुफ थे, यूसुफ सोचें कितने कीमती। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो दराहिम मादूता में बिके, कम सी गिने चुने दिरहमों में, बड़ी कम कीमत लगाई। क्यों ये कहा गया कम कीमत लगाई? कि यूसुफ तो इतने कीमती थे कि दुनिया के खजाने भी लाके एक तरफ रख दिए जाए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कीमत नहीं कोई दे सकता था, और उनको कितनी कम कीमत पे बिक रहे हैं। ये भी अल्लाह ने दिखाया ना, ये भी एक आजमाइश, कहां यूसुफ और कहां 4 टकों में वो बिक गए। कहा जाता है 20 दिरहम में बिके थे। मादूदा मीन अदद से ना, गिने हुए, यानी जिसको गिन सकते हैं, हजारों लाखों होते फिर तो नहीं गिन सकते थे ना। किसका बेटा और कहां जिंदगी का स्टार्ट और कहां पहुंच गया, और क्या वो दिल होगा जिस पे ये गुजर रही होगी कि मैं बाजार में खड़ा हुआ बिक रहा हूं, आज मेरी बोली लग रही है, आज मुझे चंद टकों में बेचा जा रहा है। कोई और हो तो उसके बाद डिप्रेशन से ही नहीं निकले। इस तरह किसी इंसान की एक दिन में कीमत बदल जाती है, क्या भाव लगता है उसका दुनिया की मंडी में। एक लड़की एक माँ बाप के घर में बड़ी लाडों से रह रही होती, ससुराल जाती है तो वो ठोकरे मारते हैं, वो ताने सुनाते हैं, वो बदसलूकी करते हैं, किधर वो ठाट फाट रह गए कि माँ बाप ने इतना हाथों हाथ लिया हुआ था। और कहां एक दिन ऐसा आ गया। तो हालात ये बदल जाते, ये जिंदगी है, ये जिंदगी है। इसमें आज चढ़ता सूरज है तो कल गरूब है, फिर एक दिन गरूब है तो अगले दिन फिर चढ़ जाता है। एक दिन धूप है, एक दिन छाऊं है। ना धूप के दिनों में इतने डिप्रेस हो जाओ कि कभी अब छाऊं नहीं आएगी, और ना छाऊं के दिनों में इतने आपे से बाहर हो जाओ कि कभी धूप भी आ जा सकती है। हसीन कितने हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम। बहुत सारे लोग ऐसे वक्तों में कहने लगते हैं, कहाँ है अल्लाह, कहाँ है हमारी मदद, क्यों नहीं उसने की उस वक्त। मसलन अगर भाई फैल गए उस वक्त, भाइयों को अल्लाह रोकता, उस वक्त क्यों ना अल्लाह ने मेरी मदद की, उस वक्त क्यों ना अल्लाह ने मुझे बचाया। अपना ईमान ही खो देते हैं, ईमान से ही हाथ से जाता है उनके, जब ऐसी बड़े ट्रॉमा से गुजरते हैं। और फिर दूसरा भी इसका मतलब है कि उन्होंने बहुत ही कम कीमत का समझा, उनको इनकी कीमत ही नहीं मालूम थी। और फिर ये माले मुफ्त समझा ना, तो इसलिए इसकी कदर भी नहीं थी। जब इंसान कहीं से ऐसे ही पकड़ धकड़ के ले तो उसको क्या होता है, जल्दी जल्दी इसको बेचो, चोरी का माल या कुछ होता है, जल्दी जल्दी बेचो, कहीं इसका कोई क्लेम करने वाला ही ना आ जाए। बाज कहते हैं कि ये ख्वाने यूसुफ की बात है कि बड़ा भाई आके कुछ दिन वहां पे रोटी उनको खाना देता रहा, और फिर एक दिन देखा तो यहाँ पे है नहीं, तो उन्होंने कहा ये तो काफला ले गया, तो पीछे गए उसके और कहा कि ये तो हमारा गुलाम है, तो तुमने लेना है तो ले लो, थोड़ी सी कीमत हमें दे दो। तो उन्होंने 20 दिरहम दे दिए, तो इन्होंने अपने आपस के अंदर बांट लिए। ये अहले किताब की उसमें बाइबल्स में लिखा हुआ, लेकिन ज्यादा कुरान के इससे ये पता चलता है कि उन्हीं काफले वालों ने जाके बेचा था, उन्होंने ही आगे थोड़ी कीमत पे इसीलिए बेच दिया कि हमारे सर से उतरे, कहीं ये ना इसके मालिक आ जाए या कि जिसका बेटा है वो आ जाए। दिरहम उस जमाने में चांदी का सिक्का होते थे। अल्लाहु अकबर। वकानू फीही मिन ज़ाहिदीन, और वो थे इससे बेरगबत लोगों में से थे, यानी उनको कोई इंटरेस्ट थोड़ी था, वो तो अपनी जान छुड़ाना चाहते थे, चलो एक बच्चा मिल गया, चोरी का माल है, बस ओने पौने बेचो, जितने भी पैसे मिलते हैं कोई बात नहीं, निकलो यहां से। तो इन्होंने बड़े कम में बेच दिया यूसुफ को, गिरी पड़ी चीज समझ के बेच दिया। पता नहीं है कि यूसुफ कितने कीमती हैं, वो रगबत नहीं रखते थे ना, जानते ही नहीं थे इनके हाथों में कौन है और ये किसका बेटा है और क्या बनेगा ये आइंदा। तो इंसान नहीं जानता, ये अल्लाह को पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है। कभी कभी जो जिसको आज हकीर समझते हो, कल वो पता नहीं कितने ऊंची ओहदों पे फायज हो, इंसान को नहीं पता। मुख्तलिफ हालात में कोई मुख्तलिफ कैसे हो सकता है। आज आप किसी को सोचते ये क्या है हमारे सामने, ये तो हमारे सामने कुछ भी नहीं, इनकी क्या वैल्यू, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये इनके पास कोई माल नहीं है, कल को अल्लाह उनको ही मालदार बना के आपके आगे खड़ा कर देता। अल्लाह अकबर। तो यहां पे वो काफले वालों ने आके यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाजार में बेच दिया, फिर उनकी एक नई जिंदगी शुरू हुई यहां से। वो जिंदगी क्या जिंदगी थी, ये फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे कि क्या हुआ उनके साथ। अल्लाह ताला हमारा पढ़ना कबूल करे, और इससे हमें बहुत सारे जो सबक मिल रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी जिंदगी में हमें अप्लाई करने की तौफीक अता फरमाए, इससे वाकई लेसन लेने वाला बना दे। जब अल्लाह ताला ने इसमें इतनी आयात इसमें रखी है ना, तो अल्लाह ताला हमारे लिए इन आयात के अंदर तसल्ली तशफी रख दे। अल्लाह ताला ने जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल को तसल्ली देने के लिए इल्हाम किया था, अल्लाह हमारे दिलों में भी कर दे, हमें भी हमारे मसलों के लिए इस तरह तसल्लियां अल्लाह ताला ता फरमा दे। और जैसे याकूब अलैहिस्सलाम का सबर मिसाली सबर है, इस तरह अल्लाह ताला मुश्किल हालात में हमें सबर करने की तौफीक दे। जब लोग दुख देना चाहते हो तो अल्लाह ताला हमारा हामी बन जाए। तो देखें वाकई जब अल्लाह किसी के साथ हो ना, तो फिर इसी तरह आसमानों से तसल्लियां उतरती हैं। भाइयों ने तो बुरा चाहा, लेकिन अल्लाह ताला ने दिल में सुकून पैदा कर दिया। ये भी एक अल्लाह की तरफ से नेमत होती है। अब कि कभी अगर परेशान हालों में एकदम सुकून की बात दिल में आ जाए ना, समझ लीजिएगा कि अल्लाह की तरफ से इल्हाम है। और जब कोई मुश्किल वक्त आए तो उसमें देखना है कि अब यहां पे पता चलता है कि कौन है सब्र जमील करने वाला। क्योंकि ये दुनिया है, इसके अंदर प्रॉब्लम्स आएंगे, इसमें लोगों की तरफ से भी सताया जाएगा। और वो कहते हैं ना, बाहर वाला कोई सताए ना तो फिर भी इंसान को ठीक है, दुख तो होता है, लेकिन ऐसे नहीं। लेकिन जो अपने जब कोई वार करते हैं ना, जो वो अपने तीर चलाते हैं ना, तो वो बड़ा ही चोट बड़ी ज्यादा लगती है। तो इस दुनिया के अंदर हालात भी आएंगे ऐसे, ये बदलनी नहीं है, इसमें आजमाइशें भी आनी है, लेकिन ये सूरा हमें बताएगी कि हालात को डील कैसे करना है। ऐसे नहीं होगा सूरत पढ़ने से आपको कभी कोई मुश्किल आनी ही नहीं है। मुश्किलें तो आती हैं और आएंगी, मसले भी आएंगे, फिर भी कैसे चलना, कैसे अपने आप को संभालना, कैसे अल्लाह ही की तरफ मदद चाहनी। और वाकई वही है जो हर चीज पे कादिर। और फिर देखिएगा अल्लाह ताला हालात बदलता है, अल्लाह निकालता है मसलों से। व्हाट अ होप ये जो सूरा देती है ना, बहुत बड़ा होप है हर एक की अंधेरी जिंदगी में, और हर एक को मायूसी से निकालती है। अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमाए। इंशाल्लाह तिलावत सुनते हैं इन आयात की।
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إن رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين